ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। काठमांडू विश्वविद्यालय और धुलीखेल अस्पताल के विवाद समाधान के लिए सहजीकरण समिति हुई गठित। भेरी अस्पताल नेपालगंज में किडनी प्रत्यारोपण सेवा शुरू करने के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र और भेरी अस्पताल के बीच हुआ समझौता। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल की समस्याओं को पहचानकर 15 दिनों के अंदर कार्ययोजना बनाकर आगे बढ़ने का संस्कृति पर्यटन मंत्री पांडे ने किया निर्देश। और बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर भारत से मांगा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण। अब समाचार विस्तार से। काठमांडू विश्वविद्यालय सभा की आज की बैठक ने केयू और धुलीखेल अस्पताल के बीच मौजूदा समस्या के समाधान सहित का प्रस्ताव तैयार करने के लिए सहजीकरण समिति गठित की है। विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार में हुई बैठक ने राष्ट्रीय योजना आयोग की सदस्य गीता कुमारी पौड्याल की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की समिति गठित की। बैठक ने समिति को और गृह कार्य करके आगामी माघ 4 गते होने वाले सीनेट बैठक में प्रतिवेदन पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी है। भेरी अस्पताल नेपालगंज में किडनी प्रत्यारोपण सेवा शुरू होने जा रही है। आज मानव अंग प्रत्यारोपण केंद्र भक्तपुर के साथ हुए समझौते के साथ ही भेरी अस्पताल नेपालगंज में किडनी प्रत्यारोपण सेवा शुरू होने का रास्ता खुल गया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल की उपस्थिति में आज भेरी अस्पताल में मानव अंग प्रत्यारोपण केंद्र के निदेशक डॉ पुकार चंद्र श्रेष्ठ और भेरी अस्पताल नेपालगंज के प्रमुख डॉ निराजन सुवेदी के बीच किडनी प्रत्यारोपण सेवा संचालन समझौता पर पत्र पर हस्ताक्षर किए। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री पौडेल ने कहा कि सभी 7 प्रदेशों में किडनी प्रत्यारोपण सेवा शुरू करने की सरकार की योजना है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल द्वारा संचालित अस्पतालों में आम नागरिकों को भी सेवा देने के उद्देश्य से जरूरी तैयारी करने के लिए कार्यदल गठित किया है। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त सचिव डॉ टंक बाराकोटी के नेतृत्व में सेना एवं प्रहरी अस्पतालों में सर्वसाधारण को भी सेवा देने के हिसाब से व्यवस्था करने के लिए कार्यदल गठित किया गया है। बता दें कि बीते जेठ 4 गते की मंत्रिपरिषद बैठक ने नेपाल प्रहरी और सेना माथत की संस्थाओं से सर्वसाधारण के लिए स्वास्थ्य सेवा खुला करने के लिए सहकार्य का ढांचा और कार्यविधि बनाने का निर्णय किया था। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने सिकल सेल एनीमिया के सभी मरीजों को निःशुल्क दवा और स्तरीय इलाज की व्यवस्था करने की प्रतिबद्धता जताई है। बांके बर्दिया लगायत पश्चिम नेपाल के सिकल सेल के मरीजों के इलाज के लिए भेरी अस्पताल में स्थापित अलग वार्ड और अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री पौडेल ने कहा कि सिकल सेल और थैलेसेमिया रोग के मरीजों के इलाज में सरकार कोई कमी नहीं होने देगी। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ने आज अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ने कहा कि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय और माथत के निकाय फौजदारी न्याय प्रणाली को गतिशील और प्रभावकारी बनाकर न्याय निरूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी उपसभापति डोल प्रसाद अरियाल को दी गई है। रासपा सचिवालय की आज की बैठक ने अरियाल को कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी देने का निर्णय किया। बैठक ने यह भी बताया कि पार्टी सभापति रवि लामिछाने ने उपसभापति अरियाल को कार्यवाहक सभापति बनाने को कहा था। बता दें कि कल रविवार को सभापति लामिछाने के विरुद्ध सहकारी अपचरण लगायत मामलों में कास्की जिला अदालत में केस दर्ज हुआ और कल ही उन्हें सांसद पद से निलंबित करने के लिए कास्की पुलिस संघीय संसद सचिवालय को पत्र भेज चुकी है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेज को बेस्ट फ्रेंड।
नमस्ते बाबूजी।
नमस्ते आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबूजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है।
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *14*15 ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। उत्तरी रसुआ के टिमुरे स्थित रसुआ गढ़ी हाइड्रो पावर का परीक्षण उत्पादन सफल हुआ है। गोसाईकुंड गांवपालिका के तातोपानी स्थित भोटे कोशी के तटीय क्षेत्र में भूमिगत संरचना द्वारा इस विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। परियोजना प्रमुख सत्यराम जाखवा ने बताया कि पहले परीक्षण से 52 मेगावाट बिजली उत्पादित की गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल ने विभिन्न देशों के लिए नवनियुक्त राजदूतों को आज पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने वाले राजदूतों में रूस के लिए जंग बहादुर चौहान, बेलायत के लिए चंद्र कुमार घिमिरे, स्पेन के लिए शनिल नेपाल, कोरिया के लिए डॉ शिवमाया तुम्बा हम्फे और भारत के लिए डॉ शंकर प्रसाद शर्मा शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव ने कहा कि नैतिकता के अभाव के कारण लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति यादव ने चिंता जताई कि नेपाल में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हाल के दिनों में लोकतंत्र का क्षयीकरण होता गया है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने पर्यटकों को कोई दिक्कत न होने के हिसाब से सहजीकरण की व्यवस्था करने का विमानस्थल संबद्ध निकायों के अधिकारियों को निर्देश किया। आज त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संबद्ध निकायों की बैठक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल को संवेदनशील क्षेत्र बताते हुए सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से जिम्मेदार होकर काम करने का विमानस्थल संबद्ध निकायों के अधिकारियों को निर्देश किया। ये बताते हुए कि 46 लाख यात्री क्षमता वाला त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल 90 लाख यात्रियों की सेवा करने के लिए बाध्य है। मंत्री पांडे ने प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह कर सेवा को दुरुस्त बनाने का आग्रह भी किया। विमानस्थल पर दिखी समस्याओं को पहचानकर 15 दिनों के भीतर कार्ययोजना बनाकर आगे बढ़ने का मंत्री पांडे ने निर्देश किया। सहकारी ठगी आरोप में काठमांडू चंद्रागिरी नगरपालिका वार्ड नंबर 12 के वार्ड अध्यक्ष नुच्छे बहादुर महर्जन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठमिल स्थित हरियाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था की रकम अपचलन के मामले में पुलिस वृत्त 16 खुटे की टोली ने महर्जन को गिरफ्तार किया। ये जानकारी जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रवक्ता एवं डीएसपी नवराज अधिकारी ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने आज इस बारे में जानकारी दी। इससे पहले बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा था कि शेख हसीना की देश वापसी के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा था कि शेख हसीना को प्रत्यर्पण समझौते के तहत भारत से लाया जा सकता है। इस साल अगस्त महीने में बांग्लादेश में व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर भारत आ गई थीं। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 28 जनवरी 2013 को प्रत्यर्पण संधि हुई थी। तब भारत के तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और बांग्लादेश के गृहमंत्री मोहिउद्दीन खान आलमगीर ने ढाका में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि संधि के आर्टिकल 6 में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें उन हालात का जिक्र है जिनके तहत व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। बीबीसी के मुताबिक इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये संधि उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन पर राजनीतिक अपराध के आरोप हैं और इसके तहत सिर्फ वे ही लोग आएंगे जिन पर हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। काठमांडू विश्वविद्यालय और धूलीखेल अस्पताल के विवाद समाधान के लिए सहजीकरण समिति हुई गठित। भेरी अस्पताल नेपालगंज में किडनी प्रत्यारोपण सेवा शुरू करने के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण केंद्र और भेरी अस्पताल के बीच हुआ समझौता। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल की समस्याओं को पहचानकर 15 दिनों के अंदर कार्ययोजना बनाकर आगे बढ़ने का संस्कृति पर्यटन मंत्री पांडे ने किया निर्देश। और बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर भारत से मांगा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।